सज्जनों, भगवत गीता के 16वें चैप्टर की चर्चा हम कर रहे हैं, जिसमें मनुष्य के अंदर जो दो तरह की प्रवृत्तियां हैं, दो तरह की नेचर है, एक डिवाइन और एक डिमोनिक नेचर है। हर इंसान के अंदर ये दोनों तरह के नेचर होते हैं, कोई कम होता है, कोई नेचर ज्यादा होता है, या किसी पर्टिकुलर टाइम पर या पर्टिकुलर सिचुएशन पर कोई पर्टिकुलर नेचर ज्यादा फोर्सफुली मैनिफेस्टेड होता है, पर सबके अंदर ये अच्छे या बुरे गुण होते हैं। और जब हम इन अच्छे और बुरे गुणों को समझते हैं कि हम सबके अंदर है, बुरे गुण जो हमें ज्यादा प्रयोग करने पर हमें राक्षस बना देता है, असुर बना देता है, अच्छे गुणों को ज्यादा पालने पर हम देवत्व की ओर जाते हैं। देवता और असुर कोई दो अलग अलग स्पीसीज नहीं है, मनुष्यों की अलग अलग कैटेगरीज है। जो बहुत अच्छे लोग हैं, जिनमें अच्छे गुण बहुत हैं और अच्छे गुणों का ज्यादा यूज करते हैं, वो देवता के कोटि में आ जाते हैं। जो बुरे गुणों के जिनके अंदर ज्यादा है और उसको ज्यादा यूज में लाते हैं, वो राक्षस या असुर कहलाते हैं। जो दोनों में मिला जुला करके रहते हैं, अच्छे और बुरे, वो नॉर्मल जनरल ह्यूमन बींग, आम इंसान होता है। और इस अध्याय में कृष्ण अर्जुन से यही चर्चा कर रहे हैं कि मनुष्य में कौन से गुण उसको राक्षस बनाता है या उस तरफ ले जाता है, कौन से गुण उसको देवत्व की ओर ले जाता है। हमने पिछले कुछ रविवारों में हमने इसकी चर्चाएं सुनी, देवत्व का क्या क्या गुण होता है, किन किन गुणों को पालने से, नॉरिश करने से, प्रैक्टिस करने से हमारा देवत्व ज्यादा अच्छा होकर के निखर के सामने आता है। और कुछ संडे से हम सुन रहे हैं कि जो आसुरी गुण है वो कौन से हैं जो हमें असुर बनाने में मदद करता है या खराब या बुरा बनाने में मदद करता है। देवियों, सज्जनों, जो भी आप कहानियां पढ़ते हैं, सुनते हैं पुराणों में, अलग अलग कथा पुस्तकों में, कहानियों के पुस्तक में, राक्षसों के बारे में, कंस है, रावण है, हिरण्याक्ष है, कश्यप, हजारों तरह के, वो सब हमारे और आपके तरह इंसान है, पर अपने बुरे गुणों के कारण वो राक्षस कहलाते हैं। और जिनको आप ऋषि, मुनि, देव, भगवान के रूप में जानते हैं, अवतार के रूप में, वो भी सब हमारे और आपके तरह इंसान है, पर अपने अच्छे गुणों के कारण वो उस देवत्व की कोटि में आते हैं। और नासमझ व्यक्ति उन्हीं को फिर ईश्वर समझ बैठता है। भाव इतना है कि इंसान के अंदर वो पोटेंशियल होता है कि वो अपने आप को देवत्व की ओर ले चले या असुरत्व की ओर ले चले। हम चर्चा कर रहे थे अभी अंतिम पड़ाव में, आखिर स्टेज में, कि मनुष्य के कौन से गुण या व्यवहार उसको राक्षस की ओर ले जाते हैं। मेरे साथ मिलके बोलिए, अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृतः प्रसक्ता काम भोगेशु पतन्ते नरकेशु च। ऐसे लोग जिनमें असुरी गुण बहुत है, राक्षसीय प्रवृत्ति बहुत है, वो अनेक चित्त विभ्रांता, एंड्रॉयड विथ मेनी थॉट्स, सैकड़ों तरह के चिंताओं से ग्रस्त रहते हैं, अपनी एबिलिटी को, अपनी परिस्थिति को बिना समझे, मुझे ये अचीव करना है, ये अचीव करना है। जैसे आप पहले सुना कि मुझे इसको, मैंने इसको हराया, इनको हरानी है, इसको मारा, इनको मरवानी है, ये जीता, इनको जीतना है, इस तरह के अनलिमिटेड सपनों में जीने वाला व्यक्ति और उसको सफल करने के लिए पूरी जिंदगी लगा देना वाला व्यक्ति मद और मोह के कारण, इल्यूशन और एरोगेंसी के कारण किसी भी हद तक सोच सकता है कि मैं किसी को भी मरवा सकता हूं, हरा सकता हूं, जीत सकता हूं, और उसमें एक अजीब से आनंद को फील करने वाला व्यक्ति जब किसी को वो हराता है, किसी को नीचा करता है, किसी को मारता है, तो उससे जो उसको खुशी समझता है, जैसे कोई ड्रग लेने वाला या अल्कोहल लेने वाला व्यक्ति जब नशे में होता है तो उसको एक अजीब तरह की फीलिंग होती है, दुनिया से उसका कोई मतलब नहीं रहता है, और उस नशे में वो अपने आप को अपनी खुशी ढूंढने लगता है। इसी तरह बुरा आदमी ऐसी चीजों में खुशी ढूंढता है और हजारों चीजों को अपने कल्पना लोक में, अपने इमेजिनरी वर्ल्ड में वो ढूंढने लगता है, पाने की कोशिश करता है, और हाईली कंफ्यूज्ड ऐसा व्यक्ति नेचुरली होता है, जो अपने पोटेंशियल को ना समझे, जो अपनी एबिलिटी को ना समझे, जो अपनी लिमिटेशन को ना समझे, जो अपनी आयु को, कितने दिन आपको जीना है इस संसार में, उसको भी ना समझे, और हजारों ऐसी चीजों में लगा रहे जो उस इम्पॉसिबल है, जो ठीक नहीं है। ऐसा जो हाईली कंफ्यूज्ड व्यक्ति है, एनस्लेव्ड सिंपली बाय देयर डिल्यूशंस, और अपने उस मोहक में ग्रस्त हो, वो धन हो, संतान हो, स्वर्ग या मोक्ष पाने की इच्छा हो, धार्मिक मोह हो, किसी भी तरह के मोह में फंसा हुआ व्यक्ति, जैसे हम संसार में देखते हैं आजकल कैसे धर्म के नाम पर लोगों को मारते हैं, टेररिज्म फैलाते हैं, लोगों के साथ किस तरह के व्यवहार करते हैं, दुनिया भर में हम देखते हैं सीधे साधे लोगों को, आम जनता को, जिसका कोई उनसे कोई डायरेक्ट कोई शत्रुता नहीं है, स्कूल में पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चों को, किसी क्लब में नाचने वाले युवाओं को, युवतियों को, ये मारने वाले लोग क्यों मारते हैं? क्योंकि उस तरह के एक अलग इल्यूशनरी दुनिया में वो जीते हैं, जिनको वो समझ नहीं आता है कि वो जो कर रहे हैं वो कितना गलत है या सही है, और ऐसी चक्कर में पड़ के इतनी गलतियां करते हैं, इतने गंदे काम करते हैं कि आखिर में उनकी जो परिणति होती है, जो रिजल्ट होता है, वो नरक में गिरते हैं। नरक कोई ऐसा जगह नहीं है कि जमीन के नीचे हो, या स्वर्ग कोई ऐसा जगह नहीं है जो बादल या क्लाउड से ऊपर रखा हुआ हो। ये हमारा और अपने जीवन का हिस्सा है। अगर मेरे जीवन में मुझे सुख मिलता है, मैं अपने घर में खुश हूं, जहां काम करता हूं खुश हूं, मेरे लाइफ से मैं खुश हूं, तो मैं स्वर्ग है। स्व का मतलब भी सुख होता है, ग का मतलब मीन्स या टूल्स, जिसके द्वारा मुझे सुख मिलता है, जिस जगह पर मुझे सुख मिलता है, जिस साधनों के द्वारा, जिस टूल्स के द्वारा मुझे सुख मिलता है, वो मेरे लिए स्वर्ग है। ठीक इसका अपोजिट है, अगर मेरा घर मेरे लिए दुखदाई है, घर आने में मुझे डर लगता है, चिंता होती है कि घर जाऊं ना जाऊं, घर जाने पर क्लेश बढ़ेगा, वो घर मेरे लिए नरक है। वो काम का जगह जहां पर मुझे जाने में डर लगता है, मैं वहां काम करने जाऊं ना जाऊं, कितना स्ट्रेस लेकर के मुझे रहना पड़ेगा, वो मेरे लिए नरक है। तो नरक हमारे और आपका जीवन है, और करोड़ों लोग अपने जीवन में ऐसे नरक के जीवन जीते हैं, अपनी बीमारी के कारण, अपने आसपास के वातावरण के कारण। तो स्वर्ग और नरक यही होता है। जब स्लेव सिस्टम यूएसए में या यूरोप में था, जो लोग स्लेव बन के रहते थे, उनका जीवन किसी कीड़े मकोड़े से तो कोई बेहतर नहीं होता था। आज भी बहुत सारे देशों में जहां टेररिज्म बहुत हाई लेवल पर है, जहां की आम जनता का जीवन का कोई मूल्य नहीं है, और खास करके जो महिलाएं हैं उनका जीवन तो किसी भी कीड़े मकोड़े से भी बदतर हालत होता जा रहा है, तो वो कोई नरक से कम नहीं है देवियों सज्जनों। तो यही जीवन जहां हमें नरक भोगना पड़ता है, जीवन में ही भोगते हैं या स्वर्ग भोगते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो अपने मद मोह अहंकार के कारण नासमझ हो जाते हैं, अच्छे बुरे का फर्क नहीं कर पाते हैं, बस अपने आप को जीतने का खुमार चढ़ा रहता है, हर जीत में आगे जीतते जाना है, हर किसी को नीचा करके, वो सब उस परम दुख नरक में गिरते हैं। अगर आप कहानियां पढ़ते हैं, रामायण पुराणों की कहानियां आपने पढ़ा, उन्होंने राक्षसों का जीवन आप देखते हैं इसी तरह का है, बड़े उजुल फुजुल टाइप के सपने को साकार करने के लिए लगे रहते हैं, मैं ना मरूं, सब मेरे नीचे हो, सबको मैं डोमिनेट कर पाऊं, और इसी को साधने के लिए वो यज्ञ तप अच्छे अच्छे कर्मों को भी करते हैं और बुरे कर्म को भी करते हैं। ऐसे लोगों का जीवन अंतकाल में नरकमय होता है, दुखमय होता है। उसी को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, बोलिए मेरे साथ, आत्मसंभाविता स्तब्धा धनमानमदान्युतः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेना विधिपूर्वकम्। आत्मसंभाव्य, ऐसे लोग जो सेल्फ कंसीटेड होते हैं, जो सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, अपने आप को ही सब कुछ समझते हैं, सोचते हैं सारी दुनिया उन्हीं के ही, उसी के चारों तरफ चलता है, सारा समाज उसी के कारण टिका हुआ है, सारा इंस्टीट्यूशन उसी के आसपास घूमता रहता है, जो कुछ भी हो रहा है उसी के कारण है, उसके बिना कुछ नहीं है। ऐसा जो सेल्फ सेंटर्ड व्यक्ति होते हैं, स्तब्ध होते हैं, स्टबर्न होते हैं, जो सोच लिया मान लिया वही फाइनल है, उससे ज्यादा कुछ सुनना नहीं, उससे कम कुछ मानना नहीं है। धनमान मदान्युता, धन के मान, उसके प्राइड और एरोगेंसी में बिल्कुल दबे हुए हैं, क्योंकि उनके पास पावर है, उनके पास धन है, संपत्ति प्रॉपर्टी है, उनके पास नॉलेज है, उनके पास पोस्ट है, जिससे वो दबा सकते हैं लोगों को, और उसके कारण जिस प्राइड और एरोगेंसी से घिरे हुए रहते हैं ऐसे लोग, जो बाकी लोगों के साथ तो करते करते हैं, खुद के साथ जो करते हैं करते हैं, वो इवन अगर वो कोई धार्मिक या रिलीजियस और स्पिरिचुअल एक्टिविटीज भी करते हैं, उसमें इतना ज्यादा उनका अहंकार छुपा होता है, वो उनके अच्छे कर्म भी उनको नरक जाने के लिए विवश करता है। ऐसे लोग यज्ञ भी करते हैं तो नाम यज्ञ, जस्ट फॉर नेम्स ओनली, सिर्फ नाम के मात्र से जिसको कहते हैं दिखाने के लिए, उसके पीछे भी उनका माइंडसेट यही होता है, देखो मैं कितना बड़ा तपस्वी हूं, ज्ञानी हूं, संत हूं, लोगों का भला करने के लिए करता हूं, इवन भगवान को भी खुश करने के लिए मैं करता हूं, मानो मेरे करने से ही भगवान खुश होता है, कितनी दया में भगवान पर भी कर डालता हूं और आसपास लोगों पर भी कर डालता हूं। तो उनके उस हवन में भी, यज्ञ में भी, पूजा में भी, उनके उस जप में भी, तप में भी, उपासना में भी इतना अहंकार छुपा होता है, तो वो सिर्फ नाम के मात्र रह जाता है। देवियों सज्जनों, कोई भी पूजा उपासना जप तप हवन हम करें, अगर उसमें हमारी श्रद्धा नहीं है, अगर उसमें हमारी भक्ति नहीं है, तो ना करें अच्छा है, तब तक ना करें जब तक आपके मन की श्रद्धा नहीं आती है, क्योंकि जब आप अनमना होकर करते हैं, बिना मन से करते हैं, तो सिर्फ हम गलत नहीं करते हैं, जो हमारे बच्चे या फैमिली मेंबर्स को हम बैठाते हैं साथ में, इनडायरेक्टली उन वहां तक भी मैसेज जाता है कि इवन आप भगवान की पूजा उपासना में भी कितना हिपोक्रेट बन सकते हैं। आप मंदिरों में देखेंगे, मंदिरों की बड़े बड़े उत्सवों में, फंक्शन में, मंदिर तो भगवान के लिए होता है, भगवान को खुश करने के लिए, भगवान की पूजा उपासना करने के लिए। बड़े बड़े उत्सवों में आप देखेंगे पॉलिटिकल लीडर्स को बुलाया जाता है किसी इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति को बुलाया जाता है, लेट आता है तो भी वेट करना पड़ता है, सारे फूल माला सम्मान उसी के लिए होता है। मंदिर भगवान के लिए आपके लिए था, आप मंदिर गए थे भगवान को पूजा करने के लिए, बनाया था भगवान के लिए। तो अगर आप उस भगवान को पूजने के लिए जो मंदिर बनाया उसके अंदर भी आप एक खास इंसान को ज्यादा इंपोर्टेंस देते हो भगवान से, तो पता लगता है कि आप 30 साल से 40 साल से 50 साल से इस मंदिर में भगवान के लिए क्या कर रहे थे, भगवान के नाम पर क्या कर रहे थे। तो ये नाम के लिए जो हम करते हैं, असुर प्रवृत्ति के लोग धार्मिक कृत्य भी नाम के लिए करते हैं, उसमें भी वो अपना फायदा ढूंढते हैं। वो फायदा क्या कि कितना समाज के लिए मैं कितना बड़ा धार्मिक हूं लोगों को पता चले, लोगों को पता चले कि मैं कितना बड़ा भगवान के सामने भी मैं झुकता हूं, मतलब मेरे जैसे व्यक्ति क्यों झुके किसी के सामने, पर भगवान के सामने झुकता हूं, एहसान करता हूं भगवान के ऊपर। घरों में भी हम देखते हैं लोग पूजा पाठ उपासना करते हैं, ना करें पर करते हैं, क्यों करते हैं पता नहीं है, पर फोन ऑफ नहीं हो सकता, हर फोन को वो अटेंड करेंगे, हर मैसेज को वो पढ़ेंगे, हर ईमेल को चेक करेंगे, पर पूजा में बैठेंगे। देवी और सज्जनों, नास्तिक होना उससे अच्छा है, राक्षस होने से अच्छा है कि आप नास्तिक हो, एथिस्ट हो। ऐसे लोग पूजा उपासना में भी नाम मात्र का करते हैं, क्यों करते हैं, दंभेन, उनका जो दंभ है, वे जो एरोगेंसी है, वो भी खोखली एरोगेंसी। दुनिया में कोई किसी, इतने बड़े संसार में कोई किसी की कोई औकात नहीं है, कब कौन मरे कौन जिंदा रहे, इसीलिए वो जो खोखला घमंड के कारण हम करते हैं। फिर और क्या करते हैं, अविधि पूर्वकम, मेरी मर्जी, ऐसा क्यों मैं बैठूं, मेरी मर्जी में जैसे बैठूं, विधि को फॉलो ना करते हुए। विधि मतलब जो भी रूल्स है, रेगुलेशन सेटअप किया गया है, पंडित जी को थोड़ा ज्यादा पैसा दे दो जी, ऐसा नहीं आप वैसा कर दो। पंडित जी भी आजकल पैसे के लालच में कुछ भी कंप्रोमाइज करने को तैयार होते हैं। हमारे खास करके हिंदू धर्म में तो आप देखेंगे कितने सारे इंसान भगवान बनते जा रहे हैं, इवन मॉडर्न एज में भी उनके नाम पर गायत्री मंत्र बना दिए जाते हैं, वेद मंत्र को तोड़ मरोड़ कर बनाते हैं। कौन, पंडित जी बनाते हैं, थोड़ा पैसा दे दो वो बिक जाते हैं। और बनाने वाला क्यों करता है, क्यों इस शास्त्र के साथ खिलवाड़ करता है, धर्म के साथ खिलवाड़ करता है, भगवान के साथ खिलवाड़ करता है, दंभ के कारण, अपनी एरोगेंसी के कारण। नहीं तो क्या जरूरत है किसी बाबा को आप भगवान बना के पूजते हो, सोने का मुकुट चढ़ाते हो, उसके मंदिर बनाते हो, उसके नाम पर मंत्र बनाते हो, यह साबित करने के लिए कि हम कुछ भी कर सकते हैं, भगवान को भी हम नीचे ला सकते हैं। इसीलिए ऐसे लोग जो ऐसा व्यवहार करते हैं वो उस आसुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं जो इस तरह के व्यवहार करते हैं। अगला श्लोक लीजिए, अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रितः मामात्म परदेहेषु प्रद्वीषंतो भ्यसूयकः। जब लोग अहंकार, अपने एरोगेंसी, ईगो, बल, अपने पावर, कुछ भी पावर हो सकता है, वो पावर पॉलिटिकल पावर हो सकता है, राजनीतिक बल, वो लोक बल हो सकता है, पब्लिक पावर हो सकता है कि मेरे पीछे इतने लोग खड़े हैं, वो किसी पोस्ट का पावर हो सकता है, वो किसी धन का भी बल हो सकता है, वो ज्ञान का भी बल हो सकता है, वो सोशल रेपुटेशन का भी बल हो सकता है, बल जिससे आप दूसरे को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, जिससे आप दूसरों को डोमिनेट कर सकते हो। वो जो बल होता है उस बल का भी जब हम मिसयूज करते हैं तो वो फिर असुरी प्रवृत्ति का होता है। दर्पम जो प्राइड है, कामम क्रेविंग कुछ भी पाने की चाहत, कुछ भी इवन इट्स बियॉन्ड माय लिमिटेशन, उसको पाने की चाहत और उसको करने के लिए किसी भी लिमिटेशन तक जाने की तैयारी। और जब ये कुछ ना हो उसके कारण अगर ऐसा कहीं सफल ना हो तो भयानक क्रोध। इन सब चीजों से ग्रस्त व्यक्ति सिर्फ इंसानों से नफरत नहीं करता है देवियों सज्जनों, वो फिर ईश्वर से भी नफरत करने लगता है, वो ईश्वर को भी चैलेंज करने लगता है। और यही आप पुराणों में पढ़ते हैं, ज्यादातर जिनको आप असुर के रूप में जानते हैं वो सब हमारे आपके तरह इंसान थे, मनुष्य मां बाप से पैदा हुए हैं, किसी तरह साधनाएं की, जब तब किया, राज्य बनाया, जो कुछ बनाया, इतने अहंकार में दृप्त होते गए वो ईश्वर को भी चैलेंज करने लगे, अपने आप को संसार का दूसरा ईश्वर मानने लगे। आज तो इजिप्ट और रोमन कल्चर नष्ट हो चुका है, जब रोमन एम्पायर हुआ करता था व मिश्र के एम्पायर हुआ करता था पुराने जमाने में, तो वो सब जो राजा होते थे अपने आप को वो भगवान घोषित करते थे, बहुत सारे, सभी नहीं, कि कोई इस एम्पायर में, इस राज्य में कोई राजा के अलावा और किसी को पूज नहीं सकता, जो कुछ हो रहा है हमारे कारण होता है। वो राजा वही जिसके अंदर ये अहंकार बल दर्प काम सब आ चुका है, जो ना माने उसको जातनाएं देना, तड़पाना, कष्ट देना, जेल में डालना, मारना, आज वो राजा नहीं रहे। मोस्ट ऑफ राज देशों में डेमोक्रेसी किसी ना किसी रूप में आ चुका है, इवन जहां कम्युनिस्ट या दूसरे तरह का शासन है कुछ हद तक डेमोक्रेसी है। राजा लोग आजकल उतना ज्यादा भगवान जैसा बन नहीं पाते और उनकी जगह ले लिया अब धर्माचार्यों ने अपने आप को भगवान घोषित करने का, अपने आप को पुजवाने का। तो व्यक्ति जब आसुरी प्रवृत्ति में आ जाता है वो सिर्फ मनुष्यों से, पशु पक्षी पेड़ पौधों से नफरत नहीं करता, वो फिर उस ईश्वर को भी चैलेंज करता है, उसके उसके उसको भी उस नफरत की दृष्टि से देखने लगता है और उसको बदलने की कोशिश करता है। अरे ऐसा दंभी या अहंकारी व्यक्ति असुर प्रवृत्ति का होता है और इसका परिणाम क्या होता है? त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मनः काम क्रोधस्तथा लोभ तस्मादेतत्रयम् त्यजेत। इसीलिए कृष्ण कंक्लूड कर रहे हैं कि हे अर्जुन देखो बहुत सारी बातें हैं असुर बनने का, देव बनने का, पर कुछ बेसिक चीजें ध्यान रखो डे टू डे लाइफ में। नरक का, दुख भोगने का, अपने आप को दुख देने का तीन ही मार्ग है, तीन गेट है नरक रूपक राज्य में एंट्री करने का। नरकस्य इदम त्रिविधम द्वारम, तेरा ट्रिपल गेट टू इट टू नरक, दुख, जरूरत से ज्यादा दुख भोगने का। काम, तुम्हारा जो लस्ट है, क्रेविंग है, ग्रीड है। क्रोध, एंगर है। और लोभ, ग्रीड है। ये तीनों हमें किसी ना किसी रूप में गलत रास्ते पर ले जाते हैं। अगर इनको छोड़ दोगे, कोई भी व्यक्ति जितना ज्यादा से ज्यादा इन तीनों चीजों को कम अपने पास रखता है, कम से कम अपने पास रखता है, ज्यादा से ज्यादा छोड़ता है, उसका जीवन उतना स्वर्गमय होता है। और जो व्यक्ति इन तीनों को जितना ज्यादा अपने पास रखता है, उसका जीवन उतना ज्यादा दुखमय, नरकपूर्ण होता है। इसीलिए एतेर विमुक्तः कौन्तेय तमो द्वारे स्त्रीभिर नरी त्रिभिर नरः तमो द्वारे स्त्रीभिर नरः आचरत्यात्मना श्रेयस् ततो याति पराम गतिम्। इसलिए कुंती पुत्र अर्जुन, एतेर विमुक्त तमोद्वारी, तमह अंधेरा, नरक का दूसरा नाम है अंधेरा, जहां आपको कुछ दुखे दिखे नहीं, सूझे नहीं, हाथ पैर मारते रहे, कुछ रास्ता ना सूझे, फ्यूचर ना सूझे। जब दुख बहुत होता है, व्यक्ति मेंटली भी ब्लाइंड हो जाता है, समझ नहीं सकता क्या करे। जब विपत्ति आती है हमारे ऊपर, कोई बहुत बड़ी विपत्ति आती है, तो हम थोड़ी देर के लिए या बहुत समय के लिए, व्यक्ति की अपनी एबिलिटी के ऊपर, हम बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। हमारा रिएक्शन हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, हम एक दूसरे तरह के रिएक्ट करते हैं, जो हमें पता ही नहीं कि मैं ऐसा क्यों करता हूं, क्योंकि व्यक्ति उस समय थोड़ी देर के लिए ब्लैंक हो जाता है। जब वो बहुत संकट में होता है, जब दुख में होता है, बहुत ज्यादा कष्ट में होता है, तो उसकी समझ की शक्ति कम हो जाती है। इसीलिए कहा कि ये तम है, अंधेरा है, डार्कनेस है, नरक, दुख, कष्ट, समस्याएं। तो इस कष्ट का जो द्वार है, ये जो तीन तरह के द्वार हैं, या इससे पहले कृष्ण ने पूरे गीता में अनेक बार चर्चा की है, ये काम पर कंट्रोल करो, ये जो लस्ट है, ये लोभ है, मोह है, इन चीजों पर कंट्रोल करो, ये सब नरक के हमारे दुख के कारण होते हैं। तभी सज्जनों, जब व्यक्ति इन चीजों से दूर हटता है, आचारति आत्मन श्रेय, वो और किसी का भला करे न करे, आत्मन श्रेय तो जरूर करता है, खुद का भला तो जरूर करता है। ही रियली वर्क्स फॉर द गुड ऑफ द सेल्फ। मेरे बुरा बनने से देवियों सज्जनों, दूसरों का कितना बुरा होगा अलग बात है, मेरा जितना बुरा होगा वो अकल्पनीय है, इमेजिनेबली से बाहर है। मेरे अच्छे होने से दूसरे को कितना फायदा होगा नहीं होगा वो अलग बात है, मुझे जो फायदा होगा वो कल्पना से बाहर होता है। इसीलिए कृष्ण कहते हैं, जब तुम इन नरक के रास्तों को छोड़ दोगे, ये जिन आसुरी प्रवृत्तियों को चर्चाएं हमने की, उनको अगर तुम कम से कम कर लोगे, तो समझ लेना कि तुम अपनी भलाई के लिए कर रहा था। और अगर तुम इस रास्ते पर चल पड़े, तुम्हारी भलाई तुम्हें लगने लगे, ऐसा नहीं कि वो भलाई सिर्फ इसी जन्म में होगा, मरने के बाद भी वो जो सुप्रीम गोल है हर इंसान की, कि मुझे वो परमानंद की प्राप्ति हो, उस प्राप्ति के लिए भी सहायक बनेगा। अगला श्लोक लीजिए। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। मैं आपसे इसीलिए बुलवाता हूं, इसी बहाने आपके उच्चारण में शुद्धता आए, आप श्लोकों को बोलना सीख पाएं, इसलिए आप बड़े बेझिझक होकर के बोलिएगा, ऊंचे स्वर में बोलिएगा, गलत होता है तो होने दीजिएगा, उससे आपके उच्चारण में शुद्धता आएगी जब आप श्लोकों को ठीक से बोलेंगे, मेरे पीछे बोलेंगे, इसलिए आप उसमें झिझक मत रखिए। तो यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य, और जो व्यक्ति शास्त्र अपनी इच्छा के कारण जो भी मेरी मर्जी, जिसको कहते हैं मेरी मर्जी, मैं वो करूं ये करूं मेरी मर्जी, इच्छा के कारण कुछ भी करता है, शास्त्र के जो इंजेक्शंस हैं, शास्त्रों की जो विधि और विधान है उनको इग्नोर करके, न स सिद्धिम अवाप्नोति, उसके जीवन में कभी सक्सेस नहीं मिलता, न सुख मिलता है, न वो परम गति खुशी मिल आनंद मिलता है। आप रास्ते पर गाड़ी चलाते हैं, रोड पर आप ट्रैफिक के रूल्स फॉलो करते हैं, ये रूल्स क्या है? कोई शास्त्र है, वो आपके देश के जो रूल्स है, शास्त्र का मतलब एक पर्टिकुलर एरिया के लिए, उसको स्टैंडर्ड बनाने के लिए, ठीक बनाने के लिए जो रूल्स और रेगुलेशंस बनाए गए। आप गाड़ी चलाते हैं तो उसके लिए ट्रैफिक रूल्स है, किसी देश में रहते हैं तो वहां कुछ रूल्स है, आपको वो फॉलो करना पड़ता है। आप किसी इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, वहां कुछ रूल्स होता है, आपको फॉलो करना पड़ता है। रूल्स बनाए गए कि एक सिस्टम बने और सबको आसानी से सब सुख मिले। आप कहीं किसी ऑफिस के या किसी काम से गए या स्टोर में, आप जो सेल्समैन है जो अकाउंट में खड़ा है, आपको अपने सामान के पैसे देकर आना है, तो आप क्यू में खड़े रहते हैं। खड़े रहते हैं उससे आपको फायदा होता है, नहीं होंगे अगर सब एक साथ कूदेंगे तो एक दूसरे को धक्का मुक्की करेंगे और लेट होगा और गड़बड़ियां होगी। रोड पर आप गाड़ी चलाते हैं, रूल्स को फॉलो करते हैं तो सब सुखी होते हैं, सबको फायदा होता है, आपको लगे मैं क्यों फॉलो करूं। राइट साइड में गाड़ी चलानी है, लेफ्ट साइड में अपोजिट डायरेक्शन से ट्रैफिक आती है, पर गाड़ी रोड खाली पड़ा है, तो खाली पड़ा है तो मैं क्यों ना चलाऊं, क्यों ऐसा रूल फॉलो करो? ऐसा रूल किसने बनाया कि खाली रोड पर जाने नहीं देते और जिस तरफ ट्रैफिक है उसमें मैं क्यों जाऊं? मैं अपोजिट डायरेक्शन में भी जा सकता हूं। आप अगर चलते हैं तो कुछ भी आपके साथ हो सकता है। आप ऐसा नहीं करते तो ये सिर्फ हम अपने लिए भलाई नहीं करते हैं, दूसरों के लिए भी भला करते हैं। कोई भी रूल्स या रेगुलेशंस देवियों और सज्जनों इटर्नल नहीं होता है, वो एक पर्पस के कारण बनाया गया है, उसको फॉलो करते हैं तो एक सिस्टम बना रहता है, सबके लिए अच्छा होता है। हो सकता है कि वो मेरे लिए अच्छा ना लगे, इलॉजिकल लगे, रैशनल ना लगे, पर जब मैं फॉलो करता हूं वो समाज और मुझे दोनों को फायदा करता है। जो लोग इसी अहंकार, बल, दर्प वगैरह के कारण रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते, जो मर्जी आए वो करने की कोशिश करते हैं, हमारे खान पान में भी देखिएगा, हमारे जीवनचर्या में किसी की कंट्रोल नहीं रहा। कोई सरकार तो आपके लाइफस्टाइल में दखल नहीं दे सकता ना, फैमिली भी मां बाप एक सर्टन लेवल तक आपको इंटरफेयर कर सकते हैं, उसके बाद हम अपनी लाइफ को खुद जीते हैं। पर उस लाइफ को जीने के लिए शास्त्र के कुछ विधान है, आपको कैसा खाना खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कब सोना चाहिए, कैसे सोना चाहिए, ये सबके विधान है। नहाना चाहिए, कैसे नहाना चाहिए हम मानते नहीं है। खाने के कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, इस खाने के साथ उस खाने को मिलाना नहीं चाहिए, उसके साथ वो नहीं पीना चाहिए, रूल्स है, रेगुलेशंस है, शास्त्र में लिखा हुआ है, हम नहीं मानते। क्यों? क्यों माने? हमारी मर्जी, में कुछ भी खाऊं, पैसा कमाता हूं, मेरा घर है, मेरा खाना है, मैं कुछ भी खाऊं। खाते हैं तो अजीबोगरीब बड़ी बड़ी बीमारियां लेकर के सोसाइटी में आती है। समझ में नहीं आता ऐसा क्यों होता है। मेरी मर्जी, मैं रात को सोऊं ना सोऊं, मैं 2 बजे तक टीवी देखूं, 4 बजे तक क्लब में डांस करूं, दिन को 3 बजे तक सोऊं, कौन है बोलने वाला? कौन सा शास्त्र, कौन सा रूल? व्हाई शुड आई फॉलो? जो फॉलो करते हैं वो बड़े लोअर स्टैंडर्ड के होते हैं, बड़े पुराने जमाने के लोग होते हैं। हम मॉडर्न हैं, हम साइंस के जमाने के हैं, टेक्नोलॉजी, साइंस टेक्नोलॉजी का रूल्स रेगुलेशन से क्या लेन देन है भैया? जवानी में पता नहीं चलता, 50 साल होते होते 100 बीमारियां लेकर बैठ जाते हैं, भगवान को कोसते हुए मेरे ही किस्मत में क्यों लिखा हुआ था ये सब, मेरे ही साथ ये होना क्यों था? देवियों सज्जनों, जब हम शास्त्र को फॉलो नहीं करते, वो शास्त्र धर्म और अध्यात्म के शास्त्र हो, या किसी देश में रहने के लिए उसके कॉन्स्टिट्यूशन हो, या किसी रोड पर चलने के लिए ट्रैफिक के रूल्स हो, ये सब शास्त्र हैं। जब आप पूजा में बैठते हैं तो उसमें कुछ रूल्स और रेगुलेशंस आपको पंडित जी बताते हैं, आप कहेंगे ये दफियानुषी है, मैं कैसा भी कर सकता हूं, मैं पैर सीधा करके भी कर सकता हूं, मैं जींस पहन के खड़े होकर भी कर सकता हूं, करिए आपकी मर्जी है। पंडित जी भी बिक जाते हैं, बेचारे क्या करें, फिर उससे आपको कुछ नहीं होने वाला है, यही कह रहा है ना। आपका जो उद्देश्य है वो पूरा होने वाला है ना, आपकी कोई सक्सेस मिलने वाला है ना, कोई सुख मिलने वाला, मिलता भी नहीं है ऐसे लोगों को, ऐसे लोगों को नहीं मिलता। इसीलिए शास्त्रों को, रूल्स को, रेगुलेशन को, कॉन्स्टिट्यूशन को मानिए, ये हमारे अच्छाई के लिए। और अंतिम श्लोक लेकर के 16वां चैप्टर खत्म करेंगे। तस्मात् शास्त्रम् प्रमाणम् ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तम् कर्म कर्तुम् इहार्हसि। इसलिए है अर्जुन, हे अर्जुन, लेट द शास्त्राज बी योर ऑथोरिटी फॉर डिटरमाइनिंग व्हाट शुड बी डन एंड व्हाट शुड नॉट बी डन। हमारे हिंदू समाज को देखिए, मोस्ट ऑफ हिंदू सोसाइटी शास्त्रों को छोड़ चुका है। जो भी धर्म के नाम पर, पूजा पाठ के नाम पर किया जाता है वो शास्त्र विरुद्ध हम करते हैं। किसी को पता ही नहीं कि वेद क्या है, उपनिषद क्या है, धर्मशास्त्र क्या है, कुछ नहीं पता। जिसको जो मन आया, जैसा मन आया करते हैं, उसका परिणाम आप देखते हैं। हिंदू प्रति वर्ष लाखों करोड़ों की संख्या में घटते जा रहे हैं, दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट होते जा रहे हैं, बचे खुचे हिंदू आपस में नास्तिक बनते जा रहे हैं, बाकी हिंदू पाखंड बनते जा रहे हैं। क्यों? कोई शास्त्र मानने को तैयार नहीं है, ना मां बाप, ना दादा दादी, ना बच्चे, कुछ नहीं, सब अपने अपने में ज्ञानी है, पंडित है, विद्वान है, हु केयर्स, कौन केयर करता है, कोई मतलब नहीं है। जीवन में क्या करना चाहिए, ना करना चाहिए, कैसे जीना चाहिए, ना किना चाहिए, आप डिसाइड मत करो। अगर आपको कंफ्यूजन है, आप किसी अथॉरिटी को फॉलो करो, वो अथॉरिटी शास्त्रों तक रहने दीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन तक रहने दीजिए, रूल्स रेगुलेशन तक रहने दीजिए, कोर्ट तक रहने दीजिए, जो जिस विषय में ज्यादा ज्ञान रखता है वहां रहने दीजिए, उनको डिसीजन लेने दीजिए, आप उनको फॉलो करिए, हमारा जीवन ज्यादा सुनहरा ज्यादा अच्छा होगा। यही कृष्ण का अर्जुन के प्रति संदेश है। अगले बार जब हम अगला 17वां चैप्टर लेंगे, वो बहुत ही सुंदर चैप्टर है कि हम अपने जीवन में जो कुछ करते हैं वो तीन तरह का होता है, इवन हम कुछ भी करते हैं वो तीन तरह का होता है, वो बड़े सुंदर समझ